राजाओं की दूसरी पुस्तक अध्याय 10। येहू द्वारा अहाब के वंशजों का नष्ट किया जाना। शमरिया नगर में अहाब के 70 पुत्र थे। तब येहू ने शमरिया के शासकों पुलनियों और अहाब के पुत्रों के पालने वालों को जो शमरिया में थे यह पत्र भेजे, जिनमें यह लिखा था, इसलिए कि आपके स्वामी के पुत्र आपकी देखरेख में है और आपके उपयोग के लिए घोड़े और रथ उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप गढ़ में सुरक्षित रह रहे हैं और आपके पास हथियार भी हैं, तो यह पत्र पाते ही अपने स्वामी के पुत्रों में से सबसे अच्छे और सबसे सही को चुन लीजिए और उसे अपने स्वामी के सिंहासन पर बैठा दीजिए। फिर अपने स्वामी के वंश के लिए युद्ध करने को तैयार हो जाइए। मगर वे सभी बहुत ही डर गए थे। उनका विचार था, जब उसके सामने दो राजा भी ठहर ना सके तो हम कैसे टिक सकेंगे। तब राजघराने के अधिकारी, नगर अध्यक्ष और पुलनियों और बालकों के पालने वालों ने येहू को यह संदेश भेजा, हम तो आपके सेवक हैं, आप जो भी आदेश देंगे हम वही पूरा करेंगे। हम किसी का राज अभिषेक नहीं करेंगे, आप वही करें जो आपकी दृष्टि में सही है। तब येहू ने उन्हें दूसरा पत्र भेजा, जिसमें उसने लिखा, बहुत बढ़िया, यदि वास्तव में आप मेरी ओर हैं, यदि आप मुझसे सहमत हैं, तो अपने स्वामी के पुत्रों के सिर लेकर मेरे पास कल इसी समय येज़रील आ जाइए। राजा के 70 पुत्र नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की देखरेख में थे, जो इनका पालन पोषण कर रहे थे। जैसे ही उन्हें येहू का पत्र मिला, उन्होंने राजकुमारों को ले जाकर उनकी हत्या कर दी, उन 70 पुत्रों की, और उनके सिर टोकरों में रख दिए। जब दूतों ने जाकर येहू को यह सूचना दी, वे राजकुमारों के सिर ले आए हैं। उसने उन्हें आदेश दिया, इन सिरों के दो ढेर बनाकर सुबह तक के लिए नगर फाटक पर रख दो। सुबह जब येहू बाहर आया, उसने खड़े होकर सारी भीड़ से कहा, आप सभी निर्दोष हैं। अपने स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र मैंने रचा और उनकी हत्या कर दी, मगर इन 70 की हत्या किसने की है? तब यह समझ लीजिए, अहाब के वंश के बारे में यहावे द्वारा कही गई कोई भी बात व्यर्थ नहीं होगी, क्योंकि यहावे ने वह पूरा कर दिखाया है जो उन्होंने अपने सेवक एलिया द्वारा प्रकट किया था। यह कहते हुए येहू ने येज़रील में अहाब के परिवार से संबंधित सभी बचे हुए व्यक्तियों को भी मार डाला। उसने अहाब के परिवार के बाकी व्यक्तियों, परिवार के करीबी मित्रों और पुरोहितों को भी मार दिया, कोई भी बचा ना रह गया। तब येहू येज़रील से शमरिया के लिए निकला। मार्ग में जब वह चरवाहों के बेत एकेद नामक स्थान में था, उसकी भेंट यहूदिया के राजा अहज्या के संबंधियों से हो गई। येहू ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम अहज्या के संबंधी हैं। हम यहाँ आए हैं कि हम राजा और राजमाता के पुत्रों का कुशल मंगल जान सके। येहू ने आदेश दिया, जीवित पकड़ लो इन्हें। उन्होंने उन्हें जीवित पकड़ लिया और उन्हें बेत एकेद के गड्ढे पर ले जाकर उनका वध कर दिया। ये 42 लोग थे। येहू ने उनमें से एक को भी जीवित ना छोड़ा। जब वह वहां से निकले, उसकी भेंट रेखाब के पुत्र योनादाब से हुई, जो उसी से भेंट करने आ रहा था। नमस्कार के बाद उसने योनादाब से पूछा, क्या तुम्हारा मन मेरे प्रति वैसा ही सच्चा है जैसा मेरा तुम्हारे प्रति? योनादाब ने उत्तर दिया, हाँ है। तब येहू ने कहा, अगर यह सत्य है तो अपना हाथ मुझे दो। जब उसने येहू की ओर अपना हाथ बढ़ाया, तो येहू ने उसे अपने रथ में खींच लिया। येहू ने उससे कहा, अब मेरे साथ चलकर यहावे के प्रति मेरा उत्साह देखना। इस प्रकार उसने योनादाब को अपने साथ रथ में ले लिया। जब वह शमरिया पहुंचा, उसने शमरिया में अहाब के सभी बचे हुए संबंधियों का वध कर दिया। वह तब तक मारता चला गया जब तक उनमें से कोई भी बाकी ना रहा, एलिया द्वारा भेजे यहावे के आदेश के अनुसार ही। येहू द्वारा बाल के पुरोहितों का संहार। तब येहू ने सारी प्रजा को इकट्ठा कर उन्हें कहा, अहाब ने बाल की उपासना सेवा कम ही की थी, येहू उसकी उपासना सेवा कहीं अधिक करेगा। तब बाल के सारे भविष्यद्वक्ता यहाँ बुलाए जाए और बाल के सारे उपासक और सारे पुरोहित भी, अनुपस्थित कोई भी ना रहे, जो अनुपस्थित होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। वस्तुतः यह बाल के सभी उपासकों को खत्म करने के लिए येहू की चाल थी कि कोई भी बाल की उपासना करने वाला बाकी ना रह जाए। तब येहू ने आदेश भेजा, बाल के लिए एक पावन समारोह आयोजित करो। सभी जगह उसकी घोषणा कर दी गई। येहू ने सारे इज़राइल देश से बाल के उपासक बुला लिए, कोई भी अनुपस्थित ना था। इन सब ने बाल के मंदिर में प्रवेश किया और पुजारियों से मंदिर पूरी तरह भर गया, एक कोने से दूसरे कोने तक। येहू ने तब वस्त्रागार अधिकारी को आदेश दिया, बाल के उपासकों के लिए तय किए गए वस्त्र लाए जाए। तब उनके लिए वस्त्र लाए गए। इसके बाद येहू ने बाल के मंदिर में प्रवेश किया, उसके साथ रेखाब का पुत्र योनादाब भी था। येहू ने बाल के उपासकों को कहा, खोजबीन कर यह तय कर लो कि यहाँ यहावे का कोई भी सेवक नहीं है, बल्कि सिर्फ बाल के उपासक ही है। तब उन्होंने बलियां और होम बलियां चढ़ाने का काम शुरू किया। येहू ने इसी समय के लिए भवन के बाहर 80 व्यक्ति चुने हुए थे, जिन्हें यह निर्देश दिया गया था, तुम में से जो कोई इन व्यक्तियों में से, जिन्हें मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं, किसी को भी बचकर निकलने देगा, अपने ही प्राणों से इसका दाम देगा। तब जैसे ही येहू ने होम बलि का काम पूरा किया, उसने पहरेदारों और राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया, अंदर जाकर हर एक को खत्म कर दो, एक भी बचने ना पाए। तब उन्होंने हर एक का वध कर डाला। पहरेदारों और अधिकारियों ने उन सबके शव बाहर फेंक दिए। तब वे बाल देवता के मंदिर के भीतरी कमरे में गए। वहां से उन्होंने बाल का प्रतिष्ठित खंभा उखाड़ा, उसे बाहर लाकर भस्म कर डाला। उन्होंने बाल के खंभे को पूरी तरह नष्ट कर दिया, साथ ही बाल के मंदिर को भी, जिसे आज तक शौचालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रकार येहू ने इज़राइल से बाल की उपासना को दूर कर दिया। मगर येहू नेबात के पुत्र यरोबोआम के पापों से दूर ना हुआ। वे पाप जो उसने इज़राइल राष्ट्र को करने के लिए उकसाया था, अर्थात बेथेल और दान में अब भी सोने के बछड़े थे। यहावे ने येहू से कहा, इसलिए कि तुमने वह करके जो मेरी दृष्टि में अच्छा है, एक बढ़िया काम किया है, अहाब के वंश के साथ तुमने जो कुछ किया है, वही था जो मेरे मन में था, चौथी पीढ़ी तक तुम्हारे पुत्र इज़राइल के राज सिंहासन पर बैठते रहेंगे। मगर येहू पूरे मन से यहावे इज़राइल के परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों का पालन करने के विषय में सावधान ना था। वह यरोबोआम के पापों से दूर ना हुआ, जो उसने इज़राइल को करने के लिए मजबूर किया था। इन्हीं दिनों यहावे ने इज़राइल राष्ट्र की सीमा को घटाना आरंभ किया। हज़ाएल पूरे इज़राइल राष्ट्र की सीमा में उन्हें हराता रहा। यर्दन के पूर्ववर्ती क्षेत्र से लेकर पूरा गिलाद, गाद और रूबेन के वंशज, मनशशे के वंशज, आर्नोन घाटी के निकटवर्ती अरोवर अर्थात गिलाद और बाशान तक, येहू द्वारा किए गए बाकी कामों, उसकी उपलब्धियों और उसके शौर्य का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। येहू अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए जा मिला। उन्होंने उसे शमरिया में गाड़ा। उसकी जगह पर उसका पुत्र यहोआहाज शासन करने लगा। इज़राइल पर येहू के शासन की पूरी अवधि 28 साल थी।